الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرزق ليطلب العبد كما يطلبه أجله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محترم دوستو اور پردے میں بیٹھ کر سننے والی درس حدیث کو میری محترمہ مائیں اور بہنیں آج کے سبق میں رزق کے بارے میں آیت پڑھی گئی اور آج کے دور میں انسان نے روٹی اور رزق کو ہی اپنا مقصد سمجھا ہے. روٹی اور رزق ہمارا مقصد ہے. آج کے زمانے میں جاب کو, روٹی کو, رزق کو اتنا اہم سمجھا ہے جتنا پچھلے دور میں کبھی بھی اتنا اہم اور امپورٹنٹ نہیں سمجھا تھا. اسی لیے روٹی کمانے کے پیچھے, مال کمانے کے پیچھے اپنے مالک کو ناراض کر بیٹھے ہیں. حلال اور حرام کی تمیز ختم کر دینا ہے. گویا دنیا میں ایک دور لگی ہوئی ہے, ہر بندہ ہر بندی پہلے سے زیادہ مال حاصل کرنے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں. اس لیے آج پیٹ بھرنے کی جتنی بیماریاں ہیں تاریخ میں اتنے کبھی بیماریاں نہیں ہوئی. جتنی پیٹ بھرے کی بیماریاں آج ہے اتنی کبھی نہیں ہوئی. بلڈ پریشر, شوگر, دل کے امراض, غور کرے تو زیادہ کھا کر مرنے والوں کی تعداد کم کھانے کی وجہ سے, زیادہ کھا کر مرنے والوں کی تعداد کم کھانے کی وجہ سے مرنے والوں سے بہت زیادہ ہے. آج کمپلین ہی کمپلین ہے, شکایت ہی شکایت ہے. جس گھر کو دیکھو وہ گھر پریشان ہے, اس میں رزق اور روٹی کی ہی شکایت ہے. جس گھر کو دیکھو رزق روٹی کی, الا ماشاءاللہ مرد عورتیں سبھی لوگ کماتے ہیں, سب کی الگ الگ گاڑیاں, اس کے باوجود بھی شکوے ہی شکوے, پریشانی ہی پریشانی. کیا پڑتا ہے, ہمارے بچپن کے زمانے میں گاؤں میں بھیک مانگنے والے آتے تھے, सवाल करते थे, कहते थे आटा दे दो, रोटी दे दो। एक वक्त आया जब फकीर रोटी पर भी अब मुतमईन नहीं होता, उसको रोटी दे दो फिर भी मुतमईन नहीं है। उसको कहता है मुझे रोटी नहीं, मुझे 5 रुपये चाहिए सिगरेट पीने के लिए। ऊपर से क्या कहता है, सिगरेट पीने के लिए 5 रुपये भी चाहिए। आज फकीर 5 रुपये पर भी राजी नहीं है, 50 रुपये का सवाल, 50 रुपये का सवाल। क्यों? इसलिए कि उसको अपने फोन के अंदर में लोड करना है, वाई क्या बोलते हैं इसको, इंटरनेट के लिए, ताकि मैं अपने महबूब लव वन को मैसेज करता रहूं। ये टाइम आ गया आज के मसाइल का। अब तो इतना आगे बढ़ गया कि आप कहें मेरे पास छुट्टे नहीं है, तो क्या मेरे पास मशीन है, उसमें अपना कार्ड लगा लो। अब तो फकीरों के पास भी मशीन आ गया। हालत ये हो चुकी है, जो औरतें आज के दौर में खूबसूरत है उसे खुशनसीब समझा जाता है। जो खूबसूरत औरतें हैं लोग उसे खुशनसीब समझते हैं, अगरचे उसकी जिंदगी में दीन पर अमल करना एक रट्टी के बराबर ना हो, परले दर्जे की खुदा की नाफरमान हो, लेकिन खूबसूरती पर उस औरत को खुशनसीब और अच्छा समझा जाता है। मर्द के पास दौलत हो तो लोग उसको बड़ा नसीबदार समझता है, बड़े नसीब वाला है, अगरचे न शक्ल हो न अकल हो, अगरचे न शक्ल हो मगर उसको बहुत बड़ा खुश नसीब समझा जाता है। अगर वो बेवकूफी की कभी कभी कोई बात कर दे तो उसको भोला बादशाह कहेंगे, यार तो है तो बड़ा नसीब वाला, यानी मैं साहब बड़े भोले भाले हैं। तो इज्जत का मैयार ही बदल गया इस दुनिया में। इज्जत को दौलत वाले को इज्जत वाला समझते हैं, खूबसूरत वाली को इज्जत वाली समझते हैं। जिसके पास माल ज्यादा होता है वो मुअज्जज समझा जाता है। न नकी को देखा, न उसके अंदर तकवे को देखा, न खौफ खुदा को देखा, मैयार ही बदल गया। आने वाले जितने भी होते हैं अक्सर लोग पूछते हैं, जी लगता है किसी ने कुछ कर दिया है मेरे जॉब पर, मेरी दुकान पर रिस्क की बंदिश कर दी है, लोगों को क्यों छोटा खुदा बनाते हो। खुदा तो वो है जो कभी बंदिश करता नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत रिस्क देना चाहे तो सारी दुनिया के लोग, इंसान, मर्द, शैतान, जिन्ना जमा होकर उसकी बंदिश करना चाहे तो बंद नहीं कर सकते, याद रखो। और अल्लाह रिस्क न देना चाहे तो सारी दुनिया के इंसान मिलकर भी तुम्हें एक रोटी का टुकड़ा भी नहीं दे सकते, अल्लाह नहीं चाहता। तो इतना फ्रस्ट्रेशन और घबराहट मालूम होता है कि कुछ और प्रॉब्लम है जिससे वो दूर हो गया है अल्लाह की नाफरमानी से की वजह से। तो इसलिए परेशानी ही परेशानी है। शरीयत की खूबसूरती देखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक सहाबी मिले और आकर उसने बिल्कुल मुलाकात की, सलाम किया। आपने देखा उसकी हठेली है ना, बिल्कुल हठेलियों में कहते हैं गट्टे पड़े हैं, गट्टे का क्या माना, बिल्कुल हार्ड है, जैसे ना बड़े बड़े ऐसे हठेली पर वो फोरे की तरह होता है, जैसे लगता है बहुत काम करने वाला आदमी है, मजबूत हाथ होता है और उसकी हठेलियां बहुत सख्त है। आपने पूछा भाई तुम्हारा हाथ इतना सख्त क्यों है, जो काम करते हैं उनकी हठेलियां बहुत सख्त हो जाती है। उसने अर्ज किया, अल्लाह के हबीब मैं मजदूर हूं, मैं लोगों के लिए मजदूरी करता हूं। क्या मजदूरी? पत्थर तोड़ता हूं। क्या करता हूं मैं? पत्थर तोड़ता हूं और वही मेरा जरिए माश है, जो कुछ पैसे मिलते हैं फिर उसको घर लाता हूं, बीवी बच्चों के लिए खाना पानी घर की जरूरियात को उसी पैसे से पूरा करता हूं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी बात सुनकर मुस्कुराए, हंसने लगे, फरमाया अलकासिबु हबीबुल्ला, क्या फरमाया, जो हाथ से मजदूरी करता है वो अल्लाह का दोस्त है, जो रात दिन कमाई करता है, किसी शॉप में काम करता है, क्यों करता है, अगर उसके पास पैसे होते, मिलियनर्स होता तो जरूर थी उसको, नहीं, ये अपने बीवी बच्चों के पेट या अपना पेट या अपनी जरूरियात पूरा करने के लिए कमाई करता है, कमाई करता है, मेरी बीवी घर पर है, बच्चे हैं, खाने पीने के लिए मुझे पैसों की जरूरत है, तो इसलिए वो क्या करता है, कमाई का अलका से, तो कहता रोज रात दिन में कमाने के लिए जाए और लेकिन अल्लाह का हुक्म पूरा करता रहे, नमाजे वगैरह, वो अल्लाह का महबूब है। कितनी खूबसूरत शरीयत है कि इंसान अगर अपनी और अपने घर वालों की जरूरियात के लिए भी कदम उठा करके कमाने के लिए जाता है तो उसको भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत का दर्जा दे रहे हैं कि इसका एक एक कदम इबादत में है। तो दीन इस्लाम ने हमें एतदाल सिखाया, एतदाल सिखाया, इसलिए शकीक बलखी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग थे, बहुत बड़े बुजुर्ग, कस्बे माश के लिए, रोजी कमाने के लिए वो एक शहर से दूसरे शहर जाते थे, सफर करते थे, जैसे होते हैं बिजनेसमैन लोग सफर करते हैं हलाल रोजी के लिए, कभी यहां से कभी वहां, यहां से कभी दुकान चला गया, दुकान से कभी माल खरीदने के लिए और जगह चला गया, होता है। तो अपने दोस्त, सारे दोस्तों को मिलकर चले गए, कुछ दिनों के बाद अपने शहर में वापस आए, जैसे पहले जमाने में लोग करते थे, मक्का से शाम जाते थे, इराक जाते थे कमाने के लिए, कभी यहां यमन जाते थे। तो शकीक बलखी को इब्राहिम अधम रहमतुल्लाह ने पूछा, शफीक क्या हुआ, कहने लगे मैं अभी रास्ते में था कि एक जख्मी वुंडेड चिड़िया को देखा जिसके पड़ भी टूटे हुए हैं, उड़ नहीं सकती थी, मैंने जा रहा था बस उड़ते हुए, उसको मुश्किल था, उड़ना मुश्किल था, उसके पैर भी टूटे हुए थे, एक अच्छी चिड़िया उसके पास आई और उसके मुंह में दाना डालने लगी, बीमार चिड़िया है, जख्मी है, लगा होगा, चल नहीं सकते। दूसरी चिड़िया आई बर्ड और उसके मुंह के अंदर में दाने डालने लगी, खिलाने लगी, और उस जख्मी चिड़िया ने, बर्ड ने उसको खा लिया। ये देखकर मैंने दिल में सोचा जो परवरदिगार एक माजूर और एक जख्मी चिड़िया को रिस्क दे सकता है तो मैं तो इंसान हूं, उसकी इबादत करने वाला हूं, मुझे भी देगा। मैं वापस आ गया, नहीं गया, रास्ते से गया, वापस आ गया दो चार दिन के अंदर में। तो इब्राहिम बिन अदम ने फरमाया माजूर चिड़िया को अपना एक्सक्यूज ना बनाओ कमाने के लिए, ताकतवर बनकर मेहनत करो। क्या कहा, ताकत पर, घर में बैठे आता रहेगा कहां से आएगा, तो बेजुबान जानवर। लेकिन तुम क्या करो, खुद भी कमाओ और अल्लाह के बंदों को भी खिलाओ, खुद भी कमाओ, खुद भी खाओ, अपने बीवी बच्चों को खिलाओ, अल्लाह के नेक बंदों को खिलाओ। शरीयत ये हरगिज नहीं कहती है कि माजूर बनकर पड़े रहो, जवान उम्र इंसान हो, दीन के दो बजे तक उसकी नीनी पूरी ना होती हो, काम नहीं करता, कितनी माएं हैं कंप्लेन करते, जवान बेटा है, डोंट वांट टू वर्क, घर में सोते रहते हैं, फिर दोपहर में नाश्ता खाते हैं जोहर के वक्त, और फिर खाना खाते हैं, कोई काम नहीं करते, और माँ से और बाप से पैसे मांगते रहते हैं। ऐसी तालीम शरीयत हमें हरगिज नहीं देती, बल्कि शरीयत ने तो कहा फरीजतुम बादल फरीज फराइज, रोजी कमाना बहुत सारे फराइज के बाद एक फरीजा है, नमाज के बाद, रोजे के बाद, जकात के बाद, हज और उमरा के बाद सबसे बड़ा फरीजा उसके बाद हलाल रोजी कमाना है। और इतना भी रोजी के अंदर में मशगूल न हो जाना कि तुम अपने खुदा को भूल जाओ। वक्त वक्त पर तुम जब अल्लाह बुलाए तो अल्लाह के हुक्म को भी पूरा करते रहो, ये दीन सिखाता है। और याद रखो, ये पेट का मसला सिर्फ मरने तक का नहीं है बल भाई, ये पेट का मसला है ना, सिर्फ मरने तक नहीं है कि बस वहां तक ही हमारा पेट है, मरने के बाद का भी है। ये पेट का मसला कभी खत्म होने वाला नहीं है। अगर नाफरमानी करके दुनिया में रहे तो जहन्नम का खाना मिलेगा, कुरान में है ना, जकूम खाएगा, जकूम खाएगा। और पीने को क्या मिलेगा, घिसरीन, घिसरीन कुरान का जिक्र है, ये कुरान की आयत का तर्जुमा कर रहा हूं। तो खाने पीने की जरूरत तो वहां भी पड़ेगी, और अगर नेक काम किए तो जन्नत के कैसे कैसे फ्रूट खाएगा, और जन्नत का कितना बेहतरीन पानी पिएगा, कौसर का। मालूम होता है ये पेट का मसला मरने तक नहीं है, कब तक है, जन्नत में एन तक है या जहन्नम में एन तक है। हलाल और हराम का ख्याल रखकर दुनिया में हलाल रोजी कमाओ, लेकिन अल्लाह के हुक्म को जरूर पूरा करो। ये पेट तो इतना छोटा है कि दो रोटी से भर जाता है ना भाई, ये खाते हैं 5-20-15। अगर पेट इतना बड़ा होता कि खाते खाते भरता ही ना, और फिर फिक्रमन होता तो फिर चलो और बात थी, यार पेट ही नहीं भर रहा है, कि बर्तन बहुत बड़ा है, जितना भी खाना सामने रख दो वो एलिफेंट की तरह या भैंस की तरह वो दो रोटियों से ज्यादा ही खाता रहता है, वो खा ही नहीं सकेगा, कितनी कोशिश करेगा, पेट कह देगा बस कर अब। अगर ज्यादा खाएगा तो अगले दिन फिर डॉक्टर के पास जाना है। सुन नहीं बात, जानवरों के पेट तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, हाथी को देखो, हिप्पो को देखो, और भी जानवर है, वो व्हेल मछली को देखो, उसका वजन हर दिन में, इमाम गज़ाली ने लिखा हर दिन में 200 पौंड से ज्यादा बढ़ता है। एक पाउंड से ज्यादा हर रोज। देखा है कभी, हमने तो देखी है मछली, भैंस तो कुछ भी नहीं उसके सामने, एलिफेंट तो कुछ भी नहीं है, बहुत बड़ी। तो जिस मछली का पेट इतना बड़ा होता है उसका वजन रोजाना 200 पाउंड पड़ता है, तो उसकी खुराक कितनी होगी। अल्लाह ऐसी मखलूक को वैसा रिस्क भी देता है। अब दो रोटी खाने वाला इंसान का हाल देखा कि वो परेशान नजर आता है, कितनी अजीब बात है। परिंदे अपने घोंसले में खाली पेट होते हैं, सुबह निकलते हैं शाम में पेट भरकर आ जाते हैं। तो सिर्फ पेट भरने का ही काम नहीं है, हम लोग दुनिया में, ये तो अल्लाह करे मेरी ये बात सारी दुनिया में पहुंचे, मुझे भी और सारी दुनिया के अंदर में ये बात पहुंचाने वालों को भी अल्लाह जज़ाए खैर दे, और जहां जहां लोग सुने, सिर्फ पेट को भर लेना ही काम नहीं है, बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अक्सरु शबअन फिद दुनिया अक्सरु जुअन फिल आखर, जो दुनिया में जितना पेट भरेगा इतना ही आखिरत में भूखा रहेगा, अल्लाह के नबी का फरमान। जो जितना पेट भर 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 कर खाएगा इतना ही ज्यादा भूखा रहेगा। इसलिए पेट का भर लेना ही मकसूद है जिंदगी नहीं। मैं आपको अल्लाह के नबी का फरमान सुना रहा हूं, समझ में आई बात। आज जो इंसान की जरूरत हो, चूंकि ये खाना इंसान की जरूरत है, चलो जरूरत के दर्जे में इंसान खा लेता है, लेकिन सुबह में फिर 10 बजे, फिर 11 बजे, फिर 12 बजे, पूरा दिन ही बीवी का सर खाता रहता है, ये लाओ वो लाओ, ये लाओ वो लाओ, वो लाओ। नहीं बात। तो जिस बंदे को पेट भर कर खाने की आदत हो, उसकी नसीहत का दूसरों पर क्या असर होता। इसलिए एक नुक्ते की बात सुनिए मेरी, और इसको अपने दिलों पर लिख लीजिए, बहुत काम की बात है। ये देने वाली जात अल्लाह तबारक व ताला है, तो फिर परवाह किस बात की है आदमी को। जब अल्लाह ही देता है, न बंदे के हाथ में है, तो उसको फिक्र हो। अल्लाह कुरान करीब में जगह जगह इस बात को बयान फरमाता है, इन्नहु लिहुब्बिल खैरी लशदीद। कह रहे हैं दो, अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान करीब में माल को दो जगह कयाम का लफ्ज फरमाया, कयाम कयाम, माल को कयाम का सबब फरमाया, दो चीज दो जगह पर। एक है दो चीजों को बयान फरमाया, जअलल्लाहुल काबतल बैत कयामन लिन्नास, कयामन लिन्नास, बैतुल्लाह इंसान की रूहानी जिंदगी के कयाम का सबब है, रूहानी स्पिरिचुअल, उसको रोजी वहां से मिलती है। उसके अलावा माल को कहा, वला तुतु सुफहा अमवालकुम अल्लती जअलल्लाहु लकुम कियामा, अमवालकुम अल्लती जअलल्लाहु लकुम। इसलिए माल इंसान को जिस्मानी जिंदगी के कयाम का सबब है कि ये जितना खाएगा पिएगा उससे उसकी जिंदगी बाकी रहेगी जब तक अल्लाह चाहेंगे। तो आजकल के दौर में तो माल दौलत है मेरी माए और बहने, वो ईमान के लिए ढाल है, समझ में आई बात। ईमान के लिए क्या है, एक प्रोटेक्शन है, शील्ड है। वरना जिसके पास माल नहीं, वो तो आजकल लोगों के जेब का रुमाल है, क्या कह रहा हूं मैं, उसको लोग ऐसे इस्तेमाल करते हैं गरीब आदमी को जैसे रुमाल को इस्तेमाल करते हैं, हैंकी को। जिसके पास माल है उसके लिए तो चलो भाई मालदार है, लेकिन जिसके पास नहीं है वो तो लोगों के जेब का क्या है भाई, रुमाल है। ये मेरी बात याद रखो, उससे नाक साफ की फेंक दिया, टिश्यू लिया फेंक दिया, टिश्यू लिया साफ किया फेंक दिया। गरीब आदमी का आज यही हाल है, हमने कई जगह देखा, लोग उससे मतलब निकाल लेते हैं और फिर उसे, यानी गाय को दूध निकाल लेते हैं फिर जा चढ़ती है, तो लोग उसे बहुत काम लेते हैं, काम कराते रहते हैं और बेचारे को कुछ देते नहीं है, उसको एक रुमाल और हैंकी की तरफ फिर फेंक देते हैं। लेकिन अल्लाह सब कुछ देखता है, अल्लाह सब कुछ देखता है। किसी का तुमने 100 खाया, अल्लाह तुम्हारा 1,00,000 खत्म कर देगा। किसी का 1,000,000 खत्म किया, अल्लाह तुम्हारे 50,000,000 खत्म कर देंगे, क्योंकि नीयत पर दारोमदार है। इसलिए रिज्क के मामले में, रोजी के मामले में दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक तो यह है कि रिज्क भी इंसान को तलाश करता रहता है, मेरी बात याद रखो, रोजी हर बंदे को, हर बंदी को तलाश कर, चाहे बच्चा हो चाहे बच्चा हो, रोजी हर बंदे को तलाश करती है और मौत भी इंसान को तलाश करती है, दोनों चीजें हैं। रोजी भी तलाश करती है किधर गया, उसके पास मुझे पहुंचना है, और मौत भी तलाश करती है किधर गया, कब उसका वक्त आता मुझे उसके पास पहुंचना है। इसीलिए हसन बसरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, जब रूह निकलती है तो घर वाले रोते हैं ना सब बैठकर, तो घर के दरवाजा, मेन दरवाजा पकड़कर मलिकुल मौत कहती है, तुम इस पर रो रहे हो, अभी मैं तुमको तुम्हारी डेट बता दूं कि तुम्हारे पास कब आएंगे हम, तो तुम मुर्दे पर रोना छोड़कर अपने ऊपर रोना शुरू करोगे। मुर्दे पर रोना छोड़ दोगे तो हर एक के लिए मौत भी तलाश करती है, रोजी भी तलाश करती है, मगर रिज्क मौत से ज्यादा फास्ट आती है। रोजी क्या है? मौत से ज्यादा तेज रफ्तार है, ये बात याद रखो। हां, ये मौत से पहले बंदे तक पहुंच जाती है। एक बात तो ये हो गई कि रिज्क भी इंसान को तलाश करता है और मौत भी, लेकिन रिज्क मौत से पहले तेज रफ्तार है, आती है। इसलिए हदीस में आता है, जब तक बंदे का एक लुकमा या एक सिप वॉटर बाकी है, उसकी मौत नहीं आएगी। ये खत्म हो गया, फौरन मौत आ जाएगी। मालूम होता है कि रिज्क खत्म, फिर मौत आती है। तो रिज्क पहले आता है। बाज मरतबा चमची से पानी पिलाते हैं ना, चम्मच से, तो आधा अंदर गया, आधा बाहर निकल गया। अब आधा ही लिखा है उसके लिए, अब दूसरा आधा उसके लिए नहीं है, रू निकल गई। और दूसरी इंपॉर्टेंट काम, इंपॉर्टेंट बात, एक तो ये हो गई कि रिस्क इंसान को तलाश करता है और मौत भी इंसान को तलाश करती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सूद का काम करने से इंसान अल्लाह का दुश्मन हो जाता है। सूद का काम करने से, चाहे मर्द हो या औरत, अपने बैंक अकाउंट में भी अगर सूद के पैसे आते हो तो उसको निकाल लो, उसके अंदर बाकी ना रखो। बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं होता कि हमें सूद अंदर में आता रहता है, मिलता रहता है, और हम बैंक से निकाल निकाल कर खाते रहते हैं, गोया सूद भी साथ में मिला हुआ है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे एक कतरा पेशाब का एक ग्लास या एक मटके पानी में डाल दिया आपने, चाहे वो 0%, 2 हो, 5 हो, जो भी हो, या 1% हो, लेकिन उसको क्या है, निकाल लो, और निकाल करके ऐसे किसी गरीब को दे दो जिसमें नियत भी ना हो। सूद का पैसा किसी को दोगे, नियत करोगे सवाब की, तो काफिर हो जाओगे, इस्लाम से निकल जाओगे। इसलिए कि गुनाह के काम में नेकी की नियत नहीं की जाती है। समझ में आई बात? एक आदमी जीना करता और नेकी की नियत करे मुझे सवाब, तो ये तो इस्लाम से निकल जाएगा। इसने तो ये कुरान की और हदीस की आयत, बड़ी बड़ी आयत का उसने गोया के मजाक उड़ा दिया। समझ में बात आ रही है? इसलिए सूद का खाने से, सूद का काम करने से इंसान जो है अल्लाह का दुश्मन हो जाता है, वो अल्लाह से लड़ाई करता है। और जो बंदा अपना सर चट्टान से मारेगा क्या होगा? बड़ा रॉक हो ना, उसमें अगर कोई आदमी सर मारे तो क्या होगा? सर उसका टूट जाएगा, फूट जाएगा। और जो अल्लाह से जंग करेगा वो अपनी तबाही का खुद जिम्मेदार होगा। दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी, कब्र भी बर्बाद हो जाएगी, आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। जाहिरी आंख ये देखती है कि बैंक से कर्जा ले लो, बिजनेस अच्छा चलेगा। उन बैंक के कर्जों के पीछे हमने हजारों बैंकरप्ट, यानी बैंकरप्ट होते हुए, बैंकरप्ट जिसको कहते हैं ना, हजारों बैंकरप्ट होते हुए देखा है। बरकत ही नहीं उसमें, खत्म हो, बस परेशानी ही परेशानी होती है। तो सूद की वजह से माल में बरकत क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। जैसे एक कतरा पेशाब का बड़े मटके में डाल दो तो पानी नापाक हो जाता है, इसी तरह सूद का एक पैसा सारी हलाल रोजी को तबाह बर्बाद, यानी बरकत खत्म कर देता है। और जकात के अदा करने से माल में बरकत शुरू होती है। जिस बंदे ने जकात निकालनी शुरू कर दी, उसके माल में अल्लाह ने बरकत डाल दी है। और बरकत किसको कहते हैं? जिसका नाम बरकत हो उसको बरकत कहते हैं? नहीं, वो रिज्क इंसान के लिए काफी हो जाए, अल्लाह उसको इतनी बरकत दे देता है कि देखने में थोड़े पैसे हैं, थोड़े हैं, लेकिन उसके लिए काफी हो जाते हैं। भाई हम तो अभी उमरा में गए, देखो कितना खर्च किया, फिर भी अल्लाह पाक ने बचा दिया, बरकत ही डाल दी उसने। उसके लिए शाफी काफी वाफी हो जाए, गैरों के सामने उसको अल्लाह हाथ फैलाने नहीं देगा, ये बरकत है। अगर जो थोड़े नजर आते हैं लेकिन अल्लाह ताला उसको किसी के सामने हाथ फैलाने से बचाएगा। तो जितना रिस्क होता है इंसान पर सुकून जिंदगी गुजारना है। तो सबसे बड़ा फितना आज के दौर में क्या है भाई, या लैतलना मिथल मा उतिया कारून। कारून का माल देखकर उस जमाने के लोगों ने कहा था काश के हमारे पास भी ऐसा माल होता। या लैतलना मिथल मा उतिया कारून, हमें भी वो मिलता जो कारून को मिला है। ये बड़ा फितना है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं नहनु कसमना बैनहुम मईशतहुम, उनके दरमियान मईशत को रोजी को हमने तकसीम किया है। उनके दरमियान में क्या रोजी को हमने तकसीम किया, अल्लाह पाक ने रोजी को तकसीम किया है। फिर क्यों हम अपनी तरफ से तमन्ना करते हैं। मोमिन अल्लाह की तकसीम पर राजी है और राजी रहे, वो अपनी तरफ से पसीना बहाए, मेहनत करे और हलाल रोजी कमाने की फिक्र करें। ये इंसान की जिम्मेदारी है। और उसके बाद दाल साग जो भी मिल जाए उस पर क्या करें भाई, अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह का शुक्र है कि लोग तो भूखे मर रहे हैं, अल्लाह ने मुझे दाल रोटी दे दी, है ना। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को फरमाया ए दाऊद, अगर तुझे खाने में कभी सड़ी हुई सब्जी भी मिल जाए तो सब्जी को न देखना, उस बात को देखना कि मेरे रब ने जब रिज्क को तकसीम किया सुबह में अपने बंदों के लिए अपनी मखलूक के लिए, तो अल्लाह ने उसके अंदर मुझे याद किया है। अगर ये सब्जी सड़ी हुई है लेकिन अल्लाह ने तुम्हें क्या किया है, याद किया है। ये बात दाऊद अलैहिस्सलाम को कही गई, भेजने वाला तो वही है, उसने याद तो रखा। चाहे रोटी ही मिल गई, चाहे कुछ दाल ही मिल गई, उससे बड़ी और क्या बात हो। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अत्अमना वसक़ाना वजअलना मिनल मुस्लिमीन। जाकर देखो दुनिया में दो दो तीन तीन चार दिन भूखे रहते हैं, खाना नहीं है, परेशान है, पानी नहीं है, बारह बारह घंटे उन गरीब को ले जाया जाता है प्लेन के अंदर में गजा से लेकर अफ्रीका तक, और उसको न खाना दिया गया न पानी दिया गया, एयरपोर्ट पर 12 घंटे अंदर रखा गया। बात अब पढ़ के देखो, अल्लाह ने हमारे घर में दाल रोटी तो दी है, हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। शुक्र के सजदे हमारे हजरत थानवी रहमतुल्लाह ने फरमाते हैं, फूटी किस्मत हमारी है कि हमें दुनिया में एक सजदा शुक्र की अदा करने की तौफीक नहीं हुई है। ये उस बात पर कहा था कि एक हाजी अगर आ जाए और मुझे एक टोपी दे दे और मैं सर पर रखूं तो उस टोपी देने वाले का मैं 100 बार शुक्रिया अदा करूंगा, जजाक अल्लाह आपने मुझे टोपी दी है। लेकिन फूटी किस्मत मेरी है कि मैंने कभी उस सर को जिसमें मैंने टोपी हाजी की रखी हुई है, उस सर को मैंने कभी अल्लाह के सामने झुकाकर उस अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया कि अल्लाह तूने मुझे सर दिया है और उसमें दिमाग दिया है और उसमें आंखें दी है, उसमें नाक और जबान और कान दिए हैं, कभी हमने अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया। बात मेरी सुन जा रही है। इसलिए हर काम मकसद जिंदगी को आप समझें कि भाई रोजी की भी जरूरत है, हलाल रोजी कमाओ जितनी चाहे कमाओ, लेकिन अल्लाह को न भूलो। अल्लाह ने हमें दुनिया में रोजी कमाने के लिए नहीं भेजा। अल्लाह ने कुरान में फरमाया वमा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। इंसान और जिन्नात को अल्लाह पाक ने दुनिया में अपनी इबादत के लिए भेजा है। ये तो जरूरियात इंसान है, असल जरूरत तो अल्लाह को राजी करना है। इसलिए अल्लाह पाक ने कहा कि तू नमाज पढ़ने के लिए रोजी कमाता है तो तेरी उस रोजी कमाने 4 घंटे 5 घंटे दुकान में खड़ा रहता है, कमाता है, काम करता है, उस 4 घंटे को भी हम तुम्हें इबादत का सवाब देंगे। क्यों? कि तेरे दिल में ये है कि मैं ये कमाऊंगा, खाऊंगा, बच्चों को खिलाऊंगा तो हम दीन की तरफ नमाज पढ़ सकेंगे, कुरान पढ़ेंगे, ताकत होगी। अगर ताकत ही नहीं होगी तो इबादत कैसे करेंगे। इसलिए ये तो जरूरियात है, असल तो अल्लाह के सामने अपने पेशानी को झुकाना है। अल्लाह आगे क्या फरमाते हैं इसी आयत के आगे वमा खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून। फिर आगे क्या फरमाया मा उरीदु मिनहुम मिर रिज़्क वमा उरीदु अन युतइमून। हम उनसे रोजी को तो कमवाना नहीं चाहते, हम नहीं चाहते हैं कि तुम रोजी ही कमाते रहो, हम नहीं चाहते तुम गधे की तरह सुबह से शाम तक बस दौड़ते ही रहो और नमाजों की तुम्हें होश ही ना हो, बल्कि मकसद को मुकद्दम करना चाहिए मकसद को। बाकी रे रिस्क की बात, तो अल्लाह कहते हैं मैं तुम्हें जो कुछ तुमने अपने घंटे लगाए हैं काम में उसमें बरकत दूंगा, लेकिन जब नमाज का वक्त आ जाए मेरी नमाज को न छोड़ना, जब इबादत का वक्त आ जाए मेरी इबादत को न छोड़ना। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का नाम तो आपने सुना होगा, बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं। किसी ने कहा हजरत क्या करें, रिस्क की बड़ी परेशानी है, आज तो यही तो सब कहते हैं ना, क्या करें बहुत प्रॉब्लम है दुकान में शॉप में। किसी को भी पूछो कोई अल्हम्दुलिल्लाह नहीं बोलता, चाहे एक रोटी का उसके पास पैसा है फिर भी नहीं बोलता, अरे यार कस्टमर ही नहीं आते, फुला है कोई अपने प्रॉब्लम ही को बयान करते रहते, कभी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया। राबिया बसरिया की बात, राबिया बसरिया एक नौजवान को देखा, यो पट्टी बांधे ऐसी पट्टी बांधे, पूछा क्या हुआ, कहा सर में दर्द है, कहा कितनी बार हुआ, कहा जिंदगी में पहली बार सर में दर्द हुआ, कहा तेरी उम्र क्या है, 27 साल की उम्र है, जिंदगी में पहली बार सर में दर्द हुआ, तू पट्टी बांध कर अल्लाह की शिकायत करता रहता है सबके सामने और 27 इयर्स तक तेरे सर में दर्द नहीं हुआ, कभी अल्लाह के सामने तूने शुक्र की पट्टी नहीं बांधी, शिकायत की पट्टी बांध दी लेकिन शुक्र की पट्टी नहीं बांधी तूने। फरमाया रिस्क की बड़े परेशानी है, तो हजरत ने कहा बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने घर जाओ और तुम्हें अपने घर में जो बंदा भी ऐसा नजर आए कि उसका रिस्क तुम्हारे जिम्मे है, जैसे घर जाएंगे आप लोग तो बीवी है उसका रिस्क तुम्हारे जिम्मे है कि नहीं। आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए, हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम, तो कुरान तो कहता है कि आदम अलैहिस्सलाम को वहां जन्नत में तो तुम दोनों साथ में रहो, अल्लाह ने बोले दोनों का लफ्ज इस्तेमाल किया, लेकिन दुनिया में आए तो कहा आदम तुमको कमाना है, यूं नहीं कहा तुम दोनों मियां बीबी को कमाना है, तुम्हें बात आ रही है ना, ये साफ लिखा है। मालूम होता है कि बीवी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके सर पर है, शोहर के। तो आप घर में जाओगे तो आप देखोगे कि भाई इसको भी मुझे खिलाना है, और बच्चे देखेंगे दो चार उसको भी खिलाना है, और अल्लाह न करे किसी के घर में बेटियां हो जी, जिनकी शादियां हो गई बाद में तलाक हो गई बिचारी घर आ गई, या किसी की बहनें हो जिनकी तलाक हो गई घर में आ गई या शोहर का इंतकाल हो गया, तो उनकी भी जिम्मेदारी सर पर है। ये लोग तो इसकी इबादत ही नहीं समझते हैं, बहुत समझते हैं, पता नहीं अल्लाह के यहाँ कितना बड़ा दर्जा है। फरमाया तुम अपने घर जाओ और अपने घर में जो बंदा ऐसा नजर आए कि उसका रिज्क यानी उसको खिलाने की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर हो, उसको तुम बाजू से पकड़कर घर से निकाल दो, जाओ या कहा बीवी को घर से निकाल दो, मैं जाकर निकाल दो इसलिए कि तुम उसको खिलाते हो ना, निकाल दो। अब तुम क्या करोगे, निकालोगे? जिसका रिज्क खुदा के जिम्मे है, जिसका रिज्क खुदा के जिम्मे है, तुम्हें उसकी क्या परवाह है, क्या परवाह है? अल्लाह तुमको रिस्क देता है अपनी बीवी के लिए, अल्लाह तुम्हें रिस्क देता है अपने बच्चों के लिए। वो एक सहाबी आए, कहा हजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ये मेरा भाई है, काम नहीं करता, मुझे पालना पड़ता है, बातें बैठा रहता है, बुढ़ा आदमी थे बैठे रहते आपके पास। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया बाज मर्तबा बाज लोगों की वजह से अल्लाह तुम्हें रोजी में बरकत दे देता है, आने वाले को कहा। तो कभी कभी बीवी बच्चों की वजह से अल्लाह हमारी रोजी में क्या दे देता है, बरकत दे देता है। बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं अगर अल्लाह ताला सारी मखलूक को मेरी इयाल बना दे, बच्चे बना दे, और सारी जमीन को तांबे की बना दे, कैसी बना दे, तांबे की, और आसमान से बारिश का एक कतरा भी न टपके, तो ये इतने इयाल इतने बच्चों की रोजी की परेशानी नहीं, इसलिए कि मेरा मौला मुझे रोजी पहुंचाएगा, चाहे जमीन तांबे की हो कि उस पर कुछ उगा नहीं सकते, ना फ्रूट ना कुछ भी नहीं, आसमान से बारिश तक नहीं है और सारी मखलूक मेरे बच्चे हैं, फिर भी मुझे इतना यकीन है अल्लाह पर कि अल्लाह उसमें से किसी को भूखा नहीं मारेगा। हमारे बुजुर्गों का तो ऐसा यकीन था, हम उस रोजी में ऐसे मारे फिरते हैं, कितनी माएं और बहनें हैं, कितने लोग हैं कि टाइम टू टाइम नमाज ही नहीं पढ़ती। इसलिए बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने किसी के पीछे नमाज पढ़ी, बाद में इमाम साहब से तारुफ हुआ तो इमाम साहब ने पूछा मिन आइना ताकुल, आपका जरिया माश क्या है, कहां से रोटी खाते हो? तो बायजीद ने क्या जवाब दिया, इस बेर हत्ता उईद सलात अल्लती सल्लैतुहा कल्बक, सबर कर, मैं जरा तुझे तेरे पीछे मैंने नमाज पढ़ी है उस नमाज को मैं लौटा लू, रिपीट कर लू, हैस शकक तफी राज़िकिल मखलूकी, इसलिए कि तुम्हें मखलूक को रिस्क देने वाले में, रिस्क देने वाले के ऊपर शक है कि कहां से रोजी खाते हो। समझ में आई बात, रिस्क की कितनी कुंजियां हैं, 70 कुंजियां हैं, रिस्क की 70 कुंजियां हैं। और अल्लाह क्या कहते हैं कुरान में, वअमुर अहलका, अपनी बीवी और बच्चों को नमाज का हुक्म करो, वस्तबिर अलैहा, और खुद भी नमाज पर जमे रहो, ला नसअलु रिज़्क़ा, हम तुमसे रोजी नहीं मांगते हैं, नहनु नरज़ुकुक, हम तुम्हारे लिए रोजी के दरवाजे खोल देंगे। ये खुद कुरान में अल्लाह कहता है, हमें तो कुरान पर तो यकीन रहा नहीं, कुरान पर तो यकीन रहा नहीं। इसलिए अजीब हालत है आज दुनिया में, रोजी रोटी के पीछे ऐसे मगन है, मगन है, मगन है कि अल्लाह को भूल गए। हलाल हराम कोई परवाह नहीं, कोई फिक्र नहीं, सूद पर सूद लेते जाओ और दुकानों पर दुकानें खोलते चले जाओ, एक दुकान हो गई सूद लेकर दूसरी कर लो, तीसरी कर लो, अरे भैया उसके अंदर में तुम्हें कितना नुकसान है वो तो तुम्हें नजर नहीं आता है, वो दुनिया में भी नुकसान करेगा, वो कब्र में भी नुकसान करेगा और आखिरत में भी, इसलिए कि तुम सूद लेकर किससे, पहाड़ से अपने सर को टकरा रहे हो, किससे भाई, पहाड़ से अपने सर को टकराओगे टूट जाएगा। जो आदमी सूद लेता है वो अल्लाह से अपने आप को टकरा रहा है, और जो अल्लाह से टकराएगा, ये तो सही हदीस बुखारी शरीफ में है, जो अल्लाह से टकराएगा उसकी क्या हालत होगी, दुनिया भी बर्बाद आखिरत भी बर्बाद होगी, मौत तो आनी ही आनी है और रिस्क की भी, रिस्क भी आना ही आना है। इसलिए अपने आप को, मर्द हो या औरत, अपने बैंक बैलेंस में आपने जितने भी पैसे जमा करते हैं उसमें अगर सूद के एक दो पैसे भी ज्यादा आते हो उसको निकाल दो, अलग कर दो और किसी ऐसे आदमी को दे दो। पहले जमाने में सूद की रकम के बारे में तो हुक्म था, क्या हुक्म था कि उसको जला दो, क्या हुक्म था उसको, अरे उसको रहने दो अंदर, इन्हीं को दे दो, हमें नहीं चाहिए, बैंक वाले को। फिर देखा कि ये लोग सारे लोगों के सूद को जमा करके इंसान ही के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, तो फिर उलमा ने उसको कहा इसको जला दो। फिर हुक्म दिया उलमा ने कि चलो भाई अगर न, यानी जलाना यानी क्या, पैसे ही नहीं, वो तो खत्म ही है, वो तो पैसे जैसे आप कागज को जलाते हो ना, ऐसे सूद के पैसे को जलाने का उलमा ने हुक्म दिया। बाद में क्या कहा, चलो कि ऐसे गरीब को दे दो जिसके पास टॉयलेट ना हो या कोई ऐसी चीज हो, जरूरत हो न, खाने पीना नहीं, ऐसी चीज जो बिल्कुल गिरी हुई हो, और उसमें भी सवाब की नियत नहीं करना है। जो आदमी सूद के पैसे में सवाब की नियत करते हैं वो इस्लाम से निकल जाता है। इसलिए एक काम तो क्या करना है, नमाज की पाबंदी करनी है, बात समझ में आ गई है ना। दूसरा काम क्या करना, इस्तिगफार की कसरत करनी है अगर आप चाहते हैं माल में बरकत हो। एक तो नमाज की पाबंदी अल्लाह ने कहा नहनु नरज़ुकुक, और इस्तिगफार के बारे में भी अल्लाह ने कहा मैं रिस्क के दरवाजे खोल दूंगा, युरसिलु समा अलैकुम मिद्रारा व यमदिदकुम बिअमवाल व बनीन, कुरान में कहा। और तीसरे नंबर पर काम करना है वो क्या है, इन्फाक फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। कुरान में क्या है, वमा अनफक्तुम मिन शैइन फहुव युखलिफु, जो कुछ तुम खर्च करोगे यकीनन फौरन अल्लाह ताला उसका बदला दे देगा। समझ में आई बात। और नंबर चार तकवा वाली जिंदगी गुजारो, और नंबर पांच इबादत की कसरत करो, और नंबर छह कसरत हज और उमरा, हज हो जाए तो ठीक है लेकिन उमरा की कसरत, उसमें भी अल्लाह ने फरमाया कसरत हज और उमरा से आदमी मोहताज नहीं होता। और नंबर सात सीला रहमी करो, अपनों के साथ, दोस्तों के साथ सिला रहमी, यानी डोंट ब्रेक योर रिलेशनशिप। और नंबर 8, कमजोरों पर हुस्न सुलूक करो, गरीब यतीम बेवाओं की मदद करो। और नंबर 9 जो है, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करो। क्या करो भाई? ये सारी बातें इसलिए कह रहा हूं, मेरे पास टाइम नहीं है, ये सारी बातों के अंदर अल्लाह रसूल ने कहा बरकत होगी, शुक्र अदा करो। और नंबर 10, घर में जब भी दाखिल हो तो क्या करो? सलाम करो, सलाम करो। और नंबर 11, वालिदैन की फरमा बरदारी करो, और अगर वालिदैन नहीं है तो वालिदैन के दोस्तों के साथ मोहब्बत रखो। और नंबर 12, वुजू के साथ रहो। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि बाद सहाबा ने शिकायत की बहुत घर में खाना पीना नहीं, फरमाया दम अल तहारा यूसी अलैका रिज़्क, वुजू के साथ रहे, अल्लाह रोजी में बरकत देगा। और नंबर 13, चाश्त की नमाज पढ़ो। मेरी माए और बहने, चाश्त की नमाज पढ़ो, 4 रकात 6 रकात 8 रकात। और नंबर 14, सूरे वाकिया की मगरिब के बाद तिलावत करो। और नंबर 15, दुआ करते रहो, अल्लाह से मांगते रहो, इंशाल्लाह इन तमाम चीजों की वजह से क्या होगा? रोजी में बरकत होगी। फिर कभी इंशाल्लाह बतलाऊंगा कि कुरान और हदीस में इन तमाम चीजों पर अल्लाह रसूल ने क्या क्या बयान फरमाया है। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। या रहमान रहीम, या ذل الجلال والاکرام, या حنان یا منان, یا بديع السماوات والارض, اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم, يا ارحم الراحمين, يا ذا الجلال والاكرام, يا ذا الجلال والاكرام, يا ذا الجلال والاكرام, يا ارحم الراحمين, يا ارحم الراحمين, يا ارحم الراحمين. يا اللہ ہمارے چھوٹے بڑے سارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے اعلی اولاد کی, ہمارے ماں باپ کی, بھائی بہنوں کی, پوری امت کی, دوست احباب کی, اللہ متعلقین کی, ہم سے محبت رکھنے والوں کی, ہم پر احسان کرنے والوں کی, پوری امت کی, اے اللہ سب کی مغفرت فرما, زندوں کی مردوں کی مغفرت فرما, جہاں جہاں میرے مریدین ہیں اللہ سب کو استقامت علی الدین نصیب فرما, اور سب کی مغفرت فرما. اللہ العالمین سب کو عافیت نصیب فرما. یا اللہ ایمان پر چلنے کی توفیق نصیب فرما, ایمان والے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرما. جو باتیں بیان کی گئی ہے اے اللہ, اس پر ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ نمازوں کے اہتمام کی, اے اللہ استغفار کی, صلہ رحمی کی. اللہ العالمین ماں باپ کے ساتھ فرما برداری کی, اللہ کے حکم کے پورا کرنے کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی, دعاؤں کی اہتمام کی. اللہ العالمین ہمیں توفیق نصیب فرما. یا اللہ بیماروں کی پریشانی, بیماروں کی بیماریوں کو دور فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ العالمین جو بھی بیمار ہو, جہاں کے بیمار ہو, سب کو عافیت صحت سکون نصیب فرما. ہمارے الیاس بھائی ماستر بیمار نہ, شفا نصیب فرما, عافیت نصیب فرما, سکون نصیب فرما. اور جتنے لوگ میرے دوست احباب جہاں کہیں, یہ ہماری مائیں اور بہنیں دور دور سے آئی, ان کو اور گھروں میں جو بھی جہاں کہیں بیمار ہو اللہ, چھوٹی بڑی جس قسم کی بیماری میں مبتلا ہو, چاہے وہ ڈائبٹیز ہو, یا چاہے وہ بلڈ پریشر ہو, چاہے وہ بدن کا درد ہو, اے اللہ چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بیماریاں جو بھی ہو اللہ, سب کو ختم فرما. ہمیں عافیت صحت سکون نصیب فرما, ہماری روزی میں برکت نصیب فرما. اللہ اپنے فضل و کرم سے, اپنے رحم و کرم سے, اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ ہماری دعاؤں کو ان آمین کہنے والوں کے آمین کے ساتھ قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلیہ وسلم.